नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। बिहार में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की तैयारियां पूरी। 122 सीटों पर 136 महिलाओं सहित 1302 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन किया। शहरी सहकारी बैंकों से युवाओं और वंचितों को सशक्त बनाने का आग्रह किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में प्रमुख अर्थशास्त्रियों की पहली बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में फरीदाबाद में विस्फोटकों और हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार। और हॉकी इंडिया ने 25 नवंबर से सैंटियागो महिला जूनियर विश्व कप के लिए 20 सदस्यों की टीम की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। बिहार में कल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। इस चरण में भारत नेपाल सीमा पर स्थित विधानसभा क्षेत्रों और सीमांचल मगध शाहबाद कोसी और मिथिलांचल क्षेत्रों में मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 3,70,00,000 से अधिक मतदाता 1,302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 136 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। सुरक्षा कारणों से कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही होगा। ऐसे मतदान केंद्रों की संख्या 1,202 है। इस चरण में 45,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान प्रक्रिया की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग ने पटना में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में एक अत्याधुनिक नियंत्रण और कमान केंद्र स्थापित किया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 595 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से महिला मतदान कर्मी करेंगी। 21 दिव्यांग मतदान केंद्रों का संचालन दिव्यांग कर्मी करेंगे। 316 आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में एनडीए और महागठबंधन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में एनडीए की ओर से सबसे अधिक 53 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और 44 उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड से चुनावी मैदान में हैं। वही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 15, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 6 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल 71 और कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मुकेश सहनी के नेतृत्व वाले विकासशील इंसान पार्टी ने 8 और सीपीआई माले ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के 12 कैबिनेट मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
चंपारण जिले में मौजूद हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की 9 सीटों पर कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं।
पश्चिम चंपारण जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में बेतिया, वाल्मीकि नगर, नौतन, चनपटिया, नरकटियागंज, रामनगर, बगहा, लौरिया और सिकटा शामिल हैं। एनडीए की ओर से भाजपा 7 सीटों पर और जदयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं महागठबंधन की ओर से कांग्रेस 6 सीट, राजद 2 सीट, जबकि विकासशील इंसान पार्टी और भाकपा माले 1-1 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। इन 9 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 72 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, बेतिया।
नवादा जिले की 5 सीटों पर भी कल मतदान होगा। एक रिपोर्ट।
नवादा जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों में हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, रजौली और वारिसलीगंज शामिल है। इन 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा और लोजपा रामविलास 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जदयू 1 सीट पर। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पर और कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। प्रमुख विधानसभा क्षेत्र नवादा सीट पर जेडीयू ने मौजूदा विधायक विभा देवी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आरजेडी ने कौशल यादव को मैदान में उतारा है, जबकि अनुज सिंह जन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, नवादा।
7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के लिए भी कल उपचुनाव होंगे। ये सीटें हैं जम्मू कश्मीर में बडगाम और नगरोटा, राजस्थान में अंता, झारखंड में घाटशिला, तेलंगाना में जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारण, मिजोरम में डंपा और उड़ीसा में नुआपड़ा। मतगणना 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनावों की मतगणना के साथ होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लुआंडा में अंगोला की संसद को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति अंगोला में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। अंगोला में भारतीय समुदाय के लगभग 8,000 लोग हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 से 13 नवंबर तक अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर हैं। वे कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में बोत्सवाना जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से भूटान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 1020 मेगावाट की पुनात सांगछो 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। भारत और भूटान ने इस परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल होंगे और भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे से भी मुलाकात करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शहरी सहकारी बैंकों को महत्वाकांक्षी युवाओं और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए आगे आना चाहिए। आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि 5 वर्ष के भीतर 2 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक कस्बे में एक शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना युवा पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ने और सहकारी क्षेत्र के लिए पेशेवर तैयार करने के उद्देश्य से की गई है।
हमने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई है जो नए प्रोफेशनल्स तैयार करेगी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की हर प्रकार की जरूरियात को पूरी करेगी। तो एक जनरेशन पूरी अमृत पीढ़ी की जो 2047 तक हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र को आगे ले जाएगी, उसको तैयार करने का हमने लक्ष्य रखा है।
इस अवसर पर श्री शाह ने अमूल और इफको को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की विश्व रैंकिंग में शीर्ष 2 स्थान हासिल करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इफको 93 लाख टन यूरिया और डीएपी का उत्पादन करके देश की हरित क्रांति का एक स्तंभ बन गया है।
आज इफको 93 लाख मैट्रिक टन यूरिया और डीएपी का उत्पादन कर हमारे देश की ग्रीन रेवोल्यूशन का स्तंभ बना है। आज ब्राजील, अमेरिका, ओमान, जॉर्डन और दुनिया के 65 देशों में इफको के नैनो यूरिया और डीएपी जाते हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अत्याधुनिक सुविधायुक्त रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों डीपीएसयू भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने 16 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में एचएएल के नए अनुसंधान और विकास मैनुअल और डीपीएसयू में नवीकरणीय ऊर्जा पहलों पर प्रकाश डालने वाली एक रिपोर्ट स्वयं का भी विमोचन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोहिमा में नागालैंड विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने उद्घाटन भाषण में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी समृद्ध संस्कृति, विविधता और मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने पूर्वोत्तर विधानसभाओं की एकता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बनाने के लिए उनकी सराहना की।
जिस राज्य के अंदर दूरदृष्टि नीति बनती है, जिस नीतियों के अंदर जनता की अपेक्षाएं आकांक्षा आती है, जिन नीतियों के अंदर जनता के विचारों से जन्म नीति बनती है, निश्चित रूप से वह राज्य भविष्य में एक व्यापक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करते हुए विकास के मूलभूत ढांचों के साथ वहां की प्रकृति, वहां की संस्कृति को जीवंत रखते हुए नीतियां बनाने का काम करेगी।
वित्त मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के सचिव, केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और आर्थिक मामलों के विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से लद्दाख की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिल रहा है।
नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने लद्दाख के कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमों को बड़ी राहत प्रदान की है। पश्मीना ऊन, नमदा कालीन और अन्य हथकरघा उत्पादों पर जीएसटी अब 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही एप्रिकॉट यानी खुबानी और सी बकथॉर्न जैसे उत्पादों पर कर में कमी से हजारों कृषक परिवारों को लाभ हुआ है। इससे महिला स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिला है। वहीं 7,500 रुपए तक के होटल के कमरों पर भी कर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी सुधारों ने न केवल लद्दाख की विरासत की रक्षा की है बल्कि इसके स्थायी उद्योगों को भी बढ़ावा दिया है। शिवांग के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक कश्मीरी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के धौज में कश्मीरी डॉक्टर के घर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। डॉक्टर मुजब्बल फरीदाबाद के अल फला विश्वविद्यालय में कार्यरत है। पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय कश्मीरी डॉक्टर के घर से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है।
रेड्स के दौरान यहाँ पे 360 केजी के आसपास इनफ्लेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है, एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है, इनसे जो है रिकवरी की गई है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज केरल और माहे में तेज बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी दिन में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। विभाग ने आज और कल छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वायु प्रदूषण से लड़ाई में सुरक्षित और स्वस्थ रहने के बारे में परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के चिकित्सा विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ एसके शर्मा और एम्स के ही पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ सौरभ मित्तल इस दौरान श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112331 0481 और 0112331 4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 467 अंक बढ़कर 83,683 पर और निफ्टी 136 अंक बढ़कर 25,629 पर है। हॉकी इंडिया ने आज आगामी FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 के लिए 20 सदस्यों की टीम की घोषणा कर दी है। ये विश्व कप 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक चिली के सेंटियागो में आयोजित किया जाएगा। ज्योति सिंह भारतीय टीम की कप्तानी करेंगी। 20 सदस्यों की इस टीम में 18 खिलाड़ी और 2 वैकल्पिक खिलाड़ी शामिल हैं। भारत को जर्मनी, आयरलैंड और नामीबिया के साथ पूल सी में रखा गया है। टीम को भारतीय कोच और पूर्व फील्ड हॉकी खिलाड़ी तुषार खांडकर प्रशिक्षित करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की तैयारियां पूरी। 122 सीटों पर 136 महिलाओं सहित 1,302 उम्मीदवार मैदान में। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन किया। शहरी सहकारी बैंकों से युवाओं और वंचितों को सशक्त बनाने का आग्रह किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में प्रमुख अर्थशास्त्रियों की पहले बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में फरीदाबाद में विस्फोटकों और हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार। और हॉकी इंडिया ने 25 नवंबर से सेंटियागो महिला जूनियर विश्व कप के लिए 20 सदस्यों की टीम की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।